तन के ओम शांति। हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहां जहां स्वयं भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। और पढ़ाई में हमें चार सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इन चार सब्जेक्ट्स में मुख्य सब्जेक्ट है योग का सब्जेक्ट। तो मुख्य सब्जेक्ट हमारा योगा का है, लेकिन ब्राह्मण संसार से एक ही आवाज सुनाई देती है, चार सब्जेक्ट में से योग का सब्जेक्ट है कठिन लगता है। अन्य तीन सब्जेक्ट सहज हैं, लेकिन योग का सब्जेक्ट थोड़ा सा कठिन है। तो हम इस योग की भट्टी में आपके साथ योग के विषय पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे। जिससे आपका योगाभ्यास सदा के लिए सरल हो जाएगा और सहज हो जाएगा। इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है? इस संसार में सबसे भाग्यशाली हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है उससे ऊंचा भाग्य इस संसार में कोई नहीं है। वो कौन सा भाग्य है? योगी आत्माएं परमात्मा के नैनों का नूर बनते हैं। परमात्मा के नैनों में समाए रहते हैं। परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है। लेकिन केवल वो योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों में भी परमात्मा सदा बसा रहता है। इस संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? इस संसार में सबसे बुद्धिमान है योगी आत्माएं। वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे होते हैं। उनके पास दो कलाएं होती हैं। पहली कला ये होती है, माया दुश्मन के राज में रहते हुए अपने मन और बुद्धि को दुश्मन के वार से सदा सेफ रखते हैं, बचाकर रखते हैं। ये चतुराई उनके पास होती है। वो कभी भी माया दुश्मन से धोखा नहीं खाते हैं। दूसरी कला उनके पास होती है, तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। तो योगी आत्माएं अपने मन और बुद्धि को परम धाम में शिव बाबा पर टिका कर रखते हैं और हर एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करते ही रहते हैं। ये अकल, ये बुद्धिमानी उनके पास होती है। जितनी महिमा शास्त्रों में परमात्मा की गई है, योगियों के महिमा से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि योगी आत्माएं परमात्मा से खजाने लेते हैं और सारे संसार की वो पालना करते रहते हैं, इसलिए उनको मास्टर भगवान का टाइटल मिलता है। बाबा कहते हैं योगी बच्चे मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे हैं। योगी आत्माएं मेरे राइट हैंड्स हैं। निरंतर सहयोगी बच्चे हैं। वो अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा इस संसार में सुख शांति प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते ही रहते हैं और नई दुनिया की स्थापना के कार्य में निरंतर सहयोगी बने रहते हैं। इसलिए योगी आत्माओं को सहयोग देने के लिए परमात्मा बंध जाते हैं। संगम युग में सबसे बड़ा वरदान है योगी भाव का वरदान। जिन्हों को योगी भाव का वरदान प्राप्त होता है उन्हों को सभी अन्य वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें ये लक्ष्य रखना है कुछ भी हो मुझे संगम युग में योगी भाव के वरदान को प्राप्त करना ही है। तो बाबा मुरली में कहते हैं मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें तीन बातें हैं, स्वयं को आत्मा समझना पहली बात, बाबा को यथार्थ रीति से समझना दूसरी बात, और बाबा से यथार्थ कनेक्शन जोड़ना ये है तीसरी बात। तो अभी हम पहली बात पर चर्चा करेंगे, स्वयं को आत्मा समझना। हम बाबा के पास आए हैं आध्यात्मिकता को जीवन में प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिकता जो शब्द है उसमें आत्मिकता शब्द अंतर्निहित है, अर्थात जब तक आत्मिक भाव नहीं जीवन में आता है तब तक आध्यात्मिकता जीवन में नहीं आ सकती। आध्यात्मिकता इंग्लिश में उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अर्थात स्वयं को जब तक स्पिरिट नहीं समझते हैं आत्मा नहीं समझते हैं तब तक हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी आ नहीं सकते। बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ की गाड़ी दी है, कार दी है, हर एक के पास वो कार है। उस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी को हमें दौड़ाना है, संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। कार चलाने वाले कैसे कार शुरू करते हैं, चाबी लेते हैं, उसको घुमाते हैं और बैटरी जैसे ही करंट उसका मिलता है गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है उसको स्टार्ट करना है तो स्वयं को स्टार समझना जरूरी है। स्टार समझते ही गाड़ी स्टार्ट होती है। और स्वयं को स्टार नहीं समझेंगे तो गाड़ी वहीं रुकी रहेगी। तो मैं चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा हूं, स्टार हूं। दुनिया में स्टार किसको कहते हैं? हाँ, जो अभिनेता होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी कोई उपलब्धि होती है। हम कौन हैं? हम हैं सुपरस्टार। बाबा है सुप्रीम स्टार और हम कौन हैं? सुपरस्टार। केवल स्टार नहीं लेकिन सुपरस्टार। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? बाबा के पास हम आए हैं हमें हमारे चरित्र का भवन का निर्माण करने के लिए, कैरेक्टर की बिल्डिंग 21 मंजिल की, 21 जन्मों की बनाने के लिए बाबा के पास आए हैं। हम सभी इंजीनियर्स हैं। 21 मंजिल की अपने चरित्र का भवन का निर्माण हम करने यहां आए हैं और उसका फाउंडेशन कौन सा है? आत्म अभिमान स्थिति। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना उसका फाउंडेशन गहरा होता है। अगर उसका फाउंडेशन गहरा नहीं होता है, पक्का नहीं होता है, तो वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, उस पर क्रैक आ सकती है। तो आत्म अभिमानी स्थिति का जो फाउंडेशन है वो बहुत गहरा हो, बहुत कंक्रीट हो और बहुत पक्का हो, बहुत मजबूत हो। और जब हम इस फाउंडेशन पर काम करते हैं, अभ्यास करते हैं और थोड़ा सा इधर उधर ध्यान चला जाता है तो माया उसमें संशय का बाम रख देती है। और संशय का बाम ब्लास्ट होते ही सारी बिल्डिंग गिर जाती है। जब बाबा परमधाम से परतवाड़ा की धरनी को देख रहे थे, बाबा की दृष्टि बड़ी तेज है। भारत की नक्शा में परतवाड़ा की धरनी को देख रहे थे तो बाबा को बहुत अच्छी तरह से चमकते हुए यहां नजर हीरे आ रहे थे। इस धरनी पर बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे चमकते हुए हीरे हैं। बाबा ने बहनों को कहा, जाओ और उनको ढूंढ के लाओ, मुझे उनकी जरूरत है। नई दुनिया बनाने के लिए मैं जो जा रहा हूं, वो चमकते हुए हीरो की मुझे जरूरत है, जाओ उनको लेके आओ। भगवान को मेरी जरूरत पड़ी? मेरे में तो कोई ऐसी विशेषता है ही नहीं, क्यों मुझे उसने चुन लिया? शायद गलती से चुना होगा। वो ब्रह्मा कुमारी बहन गलती से मेरे घर में पर्चा डाल के चली गई। बाजू में डालना चाहिए था, मेरे घर में डाल दिया गलती से। भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। God's selection is perfect selection. उनका सिलेक्शन परफेक्ट होता है, उनको ये पता है कौन सी विशेषता आप में है, और ये भी पता है उस विशेषता को नई दुनिया के कार्य में कैसे लगानी है। अगर हम अपने पर डाउट करते हैं तो बाबा का हम डिसरिगार्ड करते हैं। भगवान को मेरे पर फेथ है, लेकिन मुझे अपने पर फेथ नहीं है। कितने भाग्यशाली हम हैं, भगवान की नजर मुझ पर पड़ी। कितना मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। पिछले वर्ष बाबा ने कहा सारी दुनिया की नजरें हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर। बाबा ने कहा जितने मेरे ढेर बच्चे हैं उसमें से जो आखिरी बच्चा है उसके सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ नहीं है। आखिरी बच्चे के सामने, उसके बेट में देखो कितनी ऊंची नजर से बाबा हमें देख रहे हैं। भगवान को पहचानने की विशेषता हमारे पास है जो उसके पास नहीं है। भगवान के डायरेक्ट कार्य में हम कणा दाना लगाकर सहयोग दे रहे हैं। विशेषता को सेवा में लगा रहे हैं, तो कितने हम भाग्यशाली हैं। माया का काम है संशय लाना और बाबा का काम है फेथ को बढ़ाना, विश्वास को बढ़ाना। जब से यज्ञ की शुरुआत हो गई तब से कितने वर्ष हो गए, 67 वर्ष हो गए। हर मुरली में अनेकों बार इतने वर्षों से बाबा आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो पीछे पड़े हैं। क्यों भाई? टीचर अगर बार बार कोई बात दोहराता है, जो बहुत स्मार्ट विद्यार्थी होते हैं वो टीचर के इशारे को पकड़ लेते हैं और उस पर वो अभ्यास करते हैं और चमकते हैं स्कूल में। बार बार बाबा इस आत्मा के लेसन पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। यही पहला और यही अंतिम पाठ है। एट्टी फोर जन्मों का ये होमवर्क है, 84 जन्मों का ये होमवर्क है, 63 जन्मों का जो आत्मा में कूट कूट कर देह का भान भरा है उसको हमें हटाना है और 21 जन्मों के लिए आत्मा का भान सदा रहे, नेचुरल रहे, वो अभ्यास अभी जुटाना है। कितने वर्षों का होमवर्क हो गया? 84 जन्मों का होमवर्क हो गया। और वो हमें थोड़े से समय में पूरा करना है। कितना अभ्यास करना होगा स्वयं से पूछो। चौबीस घंटे हमें देह का भान नेचुरल रहता है, स्वप्न में भी हमें अपने देह का भान रहता है 24 घंटे। इसके बजाय सदा हमें आत्मा का भान रहे तब तक हमें इस अभ्यास को करते रहना है, क्योंकि आत्मा का भान सत्य भान है, ये देह का भान झूठा भान है। देह तो एक वस्त्र है, एक साधन है। कहते हम नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। नंगे शब्द का प्रयोग क्यों किया है? न अंगे आए थे, अंग हमें यहां मिला, जैसी बिंदु ऊपर से आ रहे थे प्रकृति ने हमें वेलकम किया, ये लो तुम्हारा वस्त्र पहनो, अंग लो अपना पहाड़ बजाने के लिए। और जब जाएंगे अंग यहीं छोड़ेंगे और न अंगे जाएंगे, यह मिट्टी में मिल जाएगा। हम बाबा के पास आए हैं एक पहेली का हल पाने के लिए। कौन सी वो पहेली है? मैं कौन हूं, इस पहेली का हल पाने के लिए यहां आए हैं। जिनों को इस पहेली का हल मिल गया है वो ब्राह्मण जीवन का मौजों का जीवन अनुभव करते हैं, और जिनों को इस पहेली का हल नहीं मिला है वो हल चल में आते ही रहते हैं और हल चलाने जैसी मेहनत करते ही रहते हैं। ब्राह्मण जीवन उनको बहुत कठिन लगता है, जितने भी ब्राह्मण संसार में आत्माएं चमक रही हैं, जिन्होंने बहुत अपनी स्थिति बनाई है, उन्हों को अगर आप एक बात पूछेंगे, इतनी श्रेष्ठ स्थिति आपने बनाई है उसका क्या गुह्य राज है, उसका सीक्रेट क्या है, एक ही जवाब मिलेगा, इतनी जो श्रेष्ठ स्थिति मैंने बनाई है उसका सीक्रेट है बाबा के पास आने के बाद मैंने आत्म अभिमानी स्थिति पर बहुत जिगरी मेहनत की है, तब इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता मुझे मिली है। हम थोड़ा सा दो चार साल ज्ञान में चलते हैं, पुराने हो जाते हैं, हमें सूक्ष्म अहंकार आता है। ये आत्मा आत्मा समझना पहला पाठ तो नयों का काम है, मेरा नहीं है। और वो अहंकार हमें इस पर अभ्यास करने से वंचित रखता है, उसके कारण हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल नहीं होते हैं। जितनी सहज आत्म अभिमानी स्थिति निरंतर होगी, नेचुरल होगी, उतना सहज और नेचुरल और निरंतर बाबा की याद रहेगी। ब्रह्मा बाबा ने पहला नंबर लिया, उसका कारण क्या है, उसका सीक्रेट क्या है? जिस दिन से बाबा को आत्मा का साक्षात्कार हुआ उस दिन से ही बाबा ने इस अभ्यास को बहुत मेहनत करके पक्का किया। हजारों बार कागज पर लिखते थे मैं आत्मा हूं आत्मा हूं, दीवार पर लिखते थे मैं आत्मा हूं आत्मा हूं, सत्संग में ये मेरी पति नहीं है ये आत्मा है, ये मेरा बच्चा नहीं आत्मा है, ये मेरी बेटी नहीं है आत्मा है, मेरी बहू नहीं आत्मा है, आत्मा आत्मा आत्मा, देखने वाले मिलने वाले आते थे, दादा तो सारा दिन आत्मा ही आत्मा रटता रहता था। लेकिन उस मेहनत ने बाबा को पहला नंबर दिलाया। यही पहला और यही अंतिम पाठ हमारा है। समझा। तो ये बात हमें महसूस करना है, कहते जड़ है तो झाड़ है। अब जड़ ही हमारे पास नहीं है तो झाड़ कहां से मिलेगा। तो आत्म अभिमान स्थिति का जड़ हमारे पास होना चाहिए। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा, जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। तो हमें ये महसूस करना है, आत्मा के पाठ को हमें जिगरी मेहनत से पक्का करना है। अभी दूसरी बात है, इसका अभ्यास कैसे करें, उसकी विधि क्या है। उसकी विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर जो बुद्धि रूपी नेत्र हमें बाबा ने दिया है, उस नेत्र के द्वारा स्वयं के स्वरूप को देखो। जितना खुद को देख सकते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं। खुद को ही अगर नहीं देख सकते हैं तो खुदा को कैसे देखेंगे, खुदा को याद कैसे करेंगे। खुद की याद नहीं, खुद को ही हम भूले रहते हैं। तो स्वयं के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से बुद्धि रूपी नेत्र से देखें कि मैं ये चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, और देखने के बाद उसमें स्थित हो जाएं। जितना समय होता है उसमें स्थित हो जाएं और उसका आनंद लेते रहें। दो बातें हैं, देखने का परसेंटेज को बढ़ाना है और उसमें स्थिति में स्थित होने के समय को बढ़ाते जाना है। जितनी बार स्वयं को देखेंगे उतनी बार उसकी गहराई आपकी बढ़ती जाएगी। कई कहते हैं मेरा योगाभ्यास में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर रखना है तो सबसे पहले आत्म अभिमानी स्थिति पर हमारी पकड़ हो। वो जब छूट जाती है तो बाबा का कनेक्शन भी टूट जाता है। तो जितनी बार देखते जाएंगे उसकी गहराई बढ़ती जाएगी। नए बच्चे अगर हैं तो 100% भान अगर हैं तो उसमें से 10% आत्मा पर हैं तो 90% देह का भान गुप्त रीति से आपको है। इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 100% आत्मा का भान और 0 देह का भान। ये है आत्म अभिमानी स्थिति गहराई की, गहन आत्म अनुभूति। समझा। आत्मा के मुख्य 7 गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति ये सात गुण आत्मा के निजी गुण हैं मूल गुण हैं ओरिजिनल क्वालिटीज हैं तो सप्त गुण वाला सप्त ऋषि इस देह रूपी गुफा में सदा बैठा रहता है जितना ये अभ्यास हमारा बढ़ता है आत्मा का जो आभा मंडल है वो दिव्य और भव्य बनता जाता है कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है जहां हम जाते हैं हमारा आभा मंडल काम करता रहता है जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति अभी ये अभ्यास आत्मा का कर रहे हैं पांच साल से दस साल से बीस साल से इस अभ्यास में आपकी उन्नति हो रही है या नहीं अगर उन्नति हो रही है तो कितनी उन्नति हो गई है ये पता अगर आपको चाहिए तो उसकी पांच स्टेप्स हैं आत्मा के उन्नति की पांच स्टेप्स हैं उनको जानने से आपको पता चलेगा कि कहां मैं खड़ी हूं सबसे पहली स्टेप जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति में टिको तो कभी स्मृति होती है कभी विस्मृति होती है कभी स्मृति रहती है कभी विस्मृति होती है तो सबसे पहली है आत्मिक स्मृति में स्थित होना जैसी आत्मिक स्मृति हमारी पक्की होती है तो दूसरी स्टेप आती है आत्मिक स्थिति अर्थात आत्मा के भान में स्थित हो जाना आत्मा के भान में स्थित हो जाते हैं तो तीसरी स्टेप आती है आत्मिक दृष्टि जो भी सामने आता है उनके भुकुटी में हमें आत्मा नजर आती है दृष्टि में दिव्यता आती है ब्रह्मा बाबा की जो दृष्टि थी वो उसको कहते हैं एक्सरे विजन माना अंदर जो छिपी हुई आत्मा भ्रुकुटी के बीच में वो बाबा को स्पष्ट नजर आती थी किसी की भी इसलिए बाबा की दृष्टि को कहते थे पारदर्शी दृष्टि एक्सरे विजन और जितनी आत्मिक दृष्टि पक्की होती है चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति अर्थात आत्मा के भान में स्थित हो जाना आत्मा देखना आत्मा अनुभव करना ये अभ्यास हो जाना उसको कहते हैं आत्मिक वृत्ति और जैसी आत्मिक वृत्ति पक्की होती है पांचवी स्टेप है आत्मिक कृति अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा के भान में स्थित हो जाना कर्म कर रहे हैं आप अपने मकान में दुकान में कहां पर भी हैं लेकिन आत्मिक स्थिति में और आत्मिक दृष्टि में पक्के हैं फिर लास्ट है आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार बन जाना जो संस्कार हमारे साथ चलते हैं, जिसके आधार पर एक के जन्म तक नेचुरल आत्मा का भान रहता है। अभी अपने से पूछो, कौन से स्टेप पर मैं खड़ी हूं आत्मा, कितना अभ्यास मुझे इस पर करना है, पहले स्टेप पर लड़खड़ा रही हूं या दूसरी पर हूं, तीसरी पर हूं, कहां हूं, कितना मुझे अभ्यास इस पर करना है। समझा? बहुत अच्छी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना है। हम सभी ने यह बहुत अच्छा अभ्यास किया है, हर क्लब किया है, उसकी यादगार कौन सी भक्ति मार्ग में है बताओ। बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में उसकी है। देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो वहां अखंड दिया जला कर रखते हैं, रखते हैं ना? क्यों रखते हैं? क्योंकि जो मंदिर में देवताएं हैं, उन्होंने संगम युग में अपने देह रूपी मंदिर में आत्मा का दिया जला कर रखने का पुरुषार्थ निरंतर किया था, उसकी वो यादगार अभी मना रहे हैं। और वो दिया निरंतर जलता रहे, उसके लिए पुजारी अपनी नींद भी फिटाते हैं। अगर ये दिया बुझ जाए तो मुझे देवताओं का श्राप मिलेगा। हमारी यादगार है। हमेशा अपने देह रूपी मंदिर में आत्मा का दीपक निरंतर जलता रहे, उसमें ज्ञान का घृत डालते रहें और ज्योत सदा जगी रहे। क्या हुआ, कल हम शाम को आ रहे थे तो ये अविनाश भाई हमको एक पहाड़ी पर ले गया। एक पुराना मकान था वहां, जैसे वहां गए बड़ा डर लग रहा था। साहु भाई, हमने कहा भाई डर ऐसा क्यों है, आवाज हो रहा है यहां, हूं हूं हूं, क्या हुआ ऐसा? बोले इस मकान में 20 साल से लाइट ही नहीं जली है, इसलिए बंगला क्या बन गया, भूत बंगला बन गया। अब इस मकान में कब से लाइट नहीं भाई, 2500 साल से इस बंगले में लाइट नहीं है, तो ये बंगला क्या हो गया, भूतों का बंगला बन गया, 5 भूतों का डेरा बन गया। जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। तो भूतेश्वर बाप ने रोशनी जला दी, दीपक जला दिया और सारे भूत भाग गए। तो जिसके घर में सदा रोशनी रहती है वही बाबा का नाम रोशन करते हैं, और जिसके घर में रोशनी नहीं होती है उसका क्या होता है, रो शनि, रुलाने वाला शनि उसके पीछे पड़ा है। तो मेरे घर में रोशनी रखना ये मेरा काम है। ये दीपक निरंतर जलता रहे, इतना प्रखर जलता रहे जो औरों को भी रोशनी मिलती रहे। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से आत्मा का दीपक जगा कर रखना, ये ध्यान रखना है। जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, एक ही चीज को डरता है। कौन सी चीज को डरता है? अग्नि को डरता है। तो ये जो माया का जंगल है, इस जंगल में मेरी जोत जगी हुई होगी तो माया का शेर मेरे पास आ नहीं सकता, वो दूर ही भागता है। तो देह को वाहन को भुलाते जाए, गलाते जाए। पांडव का क्या यादगार है? पांडव पहाड़ों पर गए, पहाड़ों पर गए, कुत्ता था उनके साथ में। जैसे पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर जाते थे, वो गल गए और कुत्ता भी पता नहीं कहां भाग गया। कुत्ता पूंछ हिलाता रहता है ना, और देहाभिमान की पूंछ जो है वो हिलाते हैं ना हम, वो गल जाती है, देह का भान भी गल जाते हैं। पहाड़ों पर अर्थात ऊंची स्थिति पर जब हम चढ़ते हैं तो ये देह भान हमारा गल जाता है, देह अभिमान की पूंछ भी जल जाती है। ये हमारा यादगार है। पांडव प्रीत बुद्धि थे, भगवान के साथ उनका कनेक्शन था, लिंक था, कनेक्शन था। तो बाबा के साथ लिंक जोड़ते हैं तो ये देह अभिमान हमारा, ये मिट्टी गल जाती है। आत्मा में जो देह की भान की जो मिट्टी है, जो अलाय है, वो गल जाती है। आत्मा एकदम क्लीन, प्योर सोना कांचन बन जाती है। समझा? इसलिए बहुत अच्छी तरह से तपस्या हमें करना है, स्वयं को आत्मा समझना, आत्मा समझना बस। लेकिन कई कहते हैं आत्मा तो समझते हैं लेकिन कुछ समय के बाद यह अभ्यास बोर हो जाता है। दादियां हमारी इतने सालों से कर रही है, कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि यह अभ्यास बोर होता है। ये क्यों बोर होता है भाई? सुखी सुखी आत्मा, ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु, कब तक समझेंगे? हम छोटी सी भूल करते हैं। मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन भूल कौन सी है, किस प्रकार की मैं आत्मा हूं, ये हम भूल जाते हैं। जिसको स्व और मान, स्व अर्थात मैं आत्मा हूं, मान अर्थात मैं विशेष आत्मा हूं, ये दोनों चीजें अगर साथ साथ होगी तो ये अभ्यास आपको कभी बोर हो गए नहीं। दुनिया में जितने भी आज तक योगी होकर गए हैं उन्होंने संपूर्ण योग की परिभाषा की है, पूर्णतया आत्म अभिमानी में खो जाना ही संपूर्ण योग है। यहां हमें बाबा बताते हैं पूर्णतया परमात्म अभिमानी बनना, परमात्मा में खो जाना ही संपूर्ण योग है। समझा? तो स्वमान में स्थित होने से यह अभ्यास बोर हमें नहीं होता है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बाबा कहते हैं आप अभी गुप्त वॉरियर हैं और बहुत जल्दी ही विश्व में प्रख्यात होने वाले हैं। विजयी रतन के रूप में सारे विश्व को आपका साक्षात्कार होने वाला है। लेकिन वर्तमान समय माया के साथ आपकी बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग देखी है कभी? प्रैक्टिकल तो नहीं देखी होगी, टीवी पर कभी देखी है? जो कमजोर होता है उसको इतना पीटता है वो दूसरा, उसका प्रतिद्वंदी बेचारे का हाल बुरा हाल कर देता है। भाई बायां हमारी दुश्मन क्यों है भाई? मुरली में जितनी भगवान की महिमा उतनी माया की महिमा होती है। माया से हमारी दुश्मनी क्यों हो गई? उसके साथ तो दोस्ती थी, एक कदम भी उसके बिना हमारा नहीं चलता था। दुश्मनी क्यों हो गई भाई? उसके दुकान पर जाना छोड़ दिया आपने, ये मेरा कस्टमर अभी पता नहीं वो शिव बाबा की दुकान पर जा रहा है। कहते ठीक है मैं देखूंगी तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। दुश्मन मन को उसने दूषित कर दिया, विकार का जहर घोल दिया। ये दुश्मन ही कर सकता है, मित्र नहीं कर सकता है। अब वो दुश्मनी ऐसी ले रही है, हमारे पीछे 24 घंटे पीछे पड़ी रहती है। माया बिल्ली क्या करती है, आत्मा का दो दिया भगवान जलाकर जाते हैं ना, जलाते हैं ना, वो थोड़ा भी अटेंशन इधर उधर होता है उसको फूंक करके फूंक देती है, अंधेरा इसके घर में हो जाए। बिल्ली पीछे पड़ी रहती है, वो बिल्ली क्यों पीछे पड़ी रहती है? क्यों पीछे पड़ी रहती है? तिरसठ जन्मों में 63 मकान किराए से उससे लिए और उसका किराया उसका बिल हमने दिया ही नहीं, और उसको पता चल गया ये तो अभी जाने वाला है परमधाम में। कहती है बिल्ली मेरा बिल दो नहीं तो तुमको छोड़ूंगी नहीं, जाऊंगे नहीं। मेरे घर में किराए से रहेंगी और परतवाड़ा से आपकी नागपुर ट्रांसफर हो जाएगी तो मैं जाने दूंगा? किराया नहीं देंगे तो मेरा किराया दो, फिर जहां मर्जी जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो उसका जो बिल है ना, जो देहाभिमान का अंश हमें काम कारोबार चलाने के लिए उधार लिया है, वो उसको वापस कर दो। वो बिल्ली पीछा छोड़ देगी हमारा, उसके प्रॉपर्टी उसको वापस कर दो, विकारों के अंश देहाभिमान का अंश ये सब वापस कर दो, उसको लौटा दो, फ्री हो जाओ। तो माया से बॉक्सिंग कैसी होती है बताओ? बॉक्सिंग कैसी होती है ये अगर आपको पता है तो उस बॉक्सिंग में आप जीत सकते हैं, और बॉक्सिंग कैसी होती है वो पता नहीं होगा तो हार जाएंगे। कैसे बॉक्सिंग होती है भाई बताओ? और बाबा कहते जितना आप रुस्तम बनते हैं ना उतना माया और भी रुस्तम बनती जाती है, छोड़ती नहीं आपको। बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे होती है? जब स्वयं को देह रूपी बॉक्स समझते हैं बजाय आत्मा रूपी हीरे के, तो देह रूपी बॉक्स समझते ही माया फाइट मारती है और हमें गिरा देती है और कहती है पांचों आओ मेरे सेनानी आओ और इसके खूब मालिश करो, खूब पिटाई करो, खूब धुनाई करो इसकी। ये मेरा कस्टमर था अभी मेरे पास आता नहीं है, इसके खूब पिटाई करो। वो पांचों डाकू आते हैं, पांचों विकार, कोई कान पकड़ता है, कोई बाल पकड़ता है, कोई छाती पर बैठता है, कोई पीटता है, बेहोश बिचारा पड़ा है, होश ही नहीं है, लावारिस पड़ा है, बेहोश पड़ा है। इतनी बुरी तरह से पिटाई की है इन दुश्मनों ने, इसको बेहोश कर दिया है। बाबा ऊपर से देख रहे हैं, देखो मेरे बच्चे की हालत क्या कर दी है माया ने, मैंने इसको राजा महाराजा के रूप में भेजा था और इसका हाल देखो बेचारे का कैसा हो चुका है, बेहोश पड़ा है। मुझे जाना होगा रहम का सागर, रहम दिल बाप जो है माउंट आबू के पहाड़ों पर आता है और वो पहाड़ों से संजीवनी बूटी भेजता है परतवाड़ा में और कहता है गीता बच्ची इस बच्चे को ये सुंघाओ मुरली संजीवनी बूटी, इसको सुंघाओ बेचारे। इस संजीवनी बूटी इसको सुंघाओ, बेचारों को बेहोश पड़ा है, है? संजीवनी बूटी आती है सुंघाते हैं, भाई आंखें खोलो आत्मा समझो, वो कहता है कोई मैं आत्मा आत्मा नहीं हूं, कोई नहीं जाओ यहां से, मैं आत्मा नहीं, बेहोश पड़ा है। दूसरे दिन मुरली को संजीवनी बूटी आती है और उसको सुंघाते हैं सुनाते हैं, भाई तुम आंखें तो खोलो, मैं तुम्हारा बाप हूं, सदा सत्य बोलने वाला हूं, तुम आत्मा हो आंख तो खोलो, मैं आत्मा हूं। थोड़ा होश आता है, अच्छा मैं आत्मा हूं, केवल आत्मा नहीं महान आत्मा हो, ठीक है मैं महान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान की संतान हो, ठीक है सर्वशक्तिमान की संतान हूं। जब हम होश में आते हैं माया दुश्मन देखती हैं, ये तो अभी अलर्ट है होश में है, अगर इस पर मैं वार करूं तो मेरी अभी दाल नहीं गल सकती है, मैं ऐसे जाना होगा, कहते मैं जा रही हूं टाटा में जा रही हूं, मिलूंगी लेकिन कब मिलूंगी, 2500 साल के बाद तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, लेकिन तब तक के लिए मैं जा रही हूं, अभी तो छोड़ तुम मुझे। तो ये हमारी रूहानी मिलिट्री है, इसका पहला लॉ है मार्शल लॉ, अटेंशन प्लीज, अपने पर अटेंशन दो प्लीज, कि आप कौन हो, आप आत्मा हो, इस पहले लॉ का हम पालन करते हैं तो माया दुश्मन हमारे पर वार नहीं कर सकती। इस वार में जो जीतते हैं उसको वीर कहते हैं और जो वीरों में वीर होते हैं शक्तिशाली होते हैं उन्हों को क्या कहते हैं, महावीर कहते हैं। बाबा ने हमें सब डाव पेच सब युक्तियां बताई हैं दुश्मन को कैसे परास्त करना है। हमारा सबसे जास्ती प्यार किससे होता है, सोच के जवाब देना, किससे जास्ती प्यार होता है बोलो, हाँ बाबा से, नहीं नहीं बाबा से नहीं है, सोच के बोलो, साहु भाई किससे हैं, हाँ पैसों से। हमारा सबसे प्यार हमारे देह से है, क्योंकि 24 घंटे साथ में रहता है, इतना लगाव है, इतना लगाव है, हम थोड़े सेकंड के लिए बाबा के पास बैठ जाते हैं, दूसरे सेकंड वो देह का भान हमें खींच कर लाता है, इतना मैग्नेटिक पुल है, इतना अटैचमेंट अपने देह के साथ है, जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, उतना ही। हमारे और बाबा के बीच में केवल एक दीवार है देह के भान की, इसको हटाएंगे तो बाबा के साथ कंबाइन अनुभूति आपको होगी, इस दीवार को हटा दो। देह का भान मिटा दो, सत्यता की शक्ति बढ़ना अर्थात सत्य स्वरूप में टिकना और सत्य स्वरूप देखते रहना और सत्य बाप को याद करते रहना। बहुत लंबे समय तक अगर बाबा के पास आपको बैठना है, घंटों घंटों बैठना है, बैठ सकते हैं, क्या करना होगा, साइंस वाले जो सैटेलाइट बनाते हैं ना, वो सैटेलाइट ऊपर उठाते हैं, ऊपर उचाते हैं, वो इंजन चलाते हैं ना, वो सैटेलाइट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो फील्ड होता है, इसकी बाउंड्री होती है, उसके ऊपर जाता है, तो वो कई वर्षों तक निराधार ऐसा ही रहता है। फिर उसको मीडिया के लिए यूज करते हैं। जब वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का फील्ड है उससे परे हो जाता है तो वो नीचे नहीं आता है। तो ऐसी देह का भान, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, देह के संबंधी ही जो देह का गुरुत्वाकर्षण का फील्ड है उससे आप ऊपर गए, देह के भान से ऊपर गए, तो उसके बाद आपके बाबा के पास घंटों घंटों बैठ सकते हैं, कोई आपको नीचे ला नहीं सकता। बस बाबा के पास बैठे रहो। विदेही स्थिति में स्थित रहो। अंगद माना क्या? अंगद बैठा था, रावण घमंडी आ गया, हे तुम बंदर हट जा मेरे रास्ते से। वो कहता है, अंगद कहता है, मेरा पैर हिला के तो दिखाओ रावण घमंडी। उसका पैर हिलाता है, उठा के फेंक दो इसको। पैर हिलाने जाता है, पसीना पहुंचता रहता है, पैर हिलाता है पसीना। अरे ये तो जादू का बंदर है, इसका पैर भी नहीं हिलता है। उसका नाम क्या था? अंगद। जिसने अंग को बुला दिया उसका रावण बुद्धि रूपी पैर हिला नहीं सकता, ये गारंटी है। कोई अंगद होकर नहीं गया है, ये सारे अंगद बैठे हैं, तालियां तो बजाओ। अंग को भुला दो, इस वस्त्र को भूलेंगे तो बाबा आपको बहुत दिव्य शस्त्र देते जाएंगे और विजयी माया पर आप बनेंगे। वस्त्रधारी हैं तो शस्त्रधारी नहीं बन सकते, भूल जाओ उसको। एरोप्लेन में कौन बैठा है? किसने सफर किया एरोप्लेन का? हाँ, कैसा एरोप्लेन उड़ता है भाई, बताओ कैसे उड़ता है, कैसे शुरू होता है? पहले लोग बैठते हैं, बाद में उसको पायलट रनवे पर लाता है, खड़ा करता है, फिर इंजन फास्ट चलाता है, इनिशियल फोर्स बहुत इकट्ठा करता है, फिर प्लेन रनवे पर फास्ट दौड़ता है। और एक बार उसने रनवे को छोड़ दिया, एयरपोर्ट को छोड़ दिया, उसके बाद वो घंटों घंटों उड़ता ही रहता है, सीधा लैंडिंग लंदन में हो जाती है 9 घंटे के बाद। तो जो देह विमान का एयरपोर्ट है उसको आप छोड़ दो, उससे डिटैच हो जाएंगे तो आत्मा का जो विमान है वो देह की धरती से, देह के एयरपोर्ट से न्यारा होते ही बाबा के पास सैर करता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ती कला की अनुभूति करता रहेगा। बस इससे नारा हो जाओ, इससे डिटैच हो जाओ। उसके लिए फोर्स, अभ्यास का फोर्स जरूरी है। कुछ विशेष ठोस अभ्यास उसके लिए चाहिए। मैं जब मधुबन में गया तो आत्मा का अभ्यास मैं करता था घंटों घंटों, कई रात मैंने, जो शांति स्तंभ है उसके बाजू में ट्रेनिंग सेक्शन है, उसके छत पर मैंने कई रातें गुजारी हैं केवल इस अभ्यास को, आत्मा 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 समझने के लिए। और उस मेहनत ने मेरे योग का फाउंडेशन पक्का किया, कुछ भी हो जाए मुझे इस अभ्यास को पक्का करना है। और जब किचन में आता था, कोई भी सामने आता है, ये बहन नहीं, ये आत्मा, ये भाई नहीं, आत्मा, 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 ऐसा अभ्यास करता था, उससे आत्मिक स्थिति बहुत पक्की हो गई। समझा? तो बहुत अच्छी तरह से आत्मा के अभ्यास को हमें पक्का करना है। उसके लिए ड्रिल करो, अलग अलग प्रकार के अभ्यास है, दो चार प्रकार के अभ्यास है। पहला है अभ्यास, इस देह रूपी कार में मैं आत्मा ड्राइवर यहां बैठा हूं, और ये जो ब्रेन का जो स्टीयरिंग है उसके द्वारा इसको कार को चला रही हूं। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास बैठा हूं, शरीर का ध्यान कर रहा हूं। इस देह रूपी गुफा में मैं आत्मा तपस्वी बैठा हूं। इस देह रूपी शोकेस में मैं आत्मा शोपीस विराजमान हूं। जो आपको अभ्यास अच्छा लगता है करते रहो, लेकिन आत्मा के अभ्यास को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। समझा? तो जैसा जैसा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा उसमें आपको बहुत मजा आएगा। अति इंद्रिय सुख माना अति इंद्रिय, इंद्रिय सुख से अति माना बढ़कर। जब हम आत्मा के बांध में टिक जाते हैं तो अति इंद्रिय सुख हमें अनुभव होता है, उसका आनंद हम भरपूर लेते हैं। समझा? इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस अभ्यास को करते जाना है। दादियां, जो भी दादियां हमें मधुबन में, कई बातें दादियों से डायरेक्ट सीखा। अभी इतनी पुरानी दादियां, इतने वर्षों तक उन्होंने आत्मा का अभ्यास किया, फिर भी अभी भी आत्मा के अभ्यास को मॉलिश पॉलिश करते ही रहते हैं, उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए अभ्यास करते ही रहते हैं। समझा क्या? तो बहुत अच्छा अभ्यास को इसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, इसका भरपूर आनंद लेना है। ठीक है ना? अभी अभ्यास को करेंगे। मैं देख रहा हूं कई कोई से आंखें बंद कर रही है, थोड़ा झूले में झूल रही है मस्ती से। यहां से देखा मैंने, निंद्रा देवी इधर घुस गई थी, उधर से भी आई थी एक, इधर से भी आई। निंद्रा देवी नींद के झूले में झूला रही है। तो अपरयुग से हमारा अभ्यास है ना सैल्यूट मारने का, माया को, माया सैल्यूट। देख रहा है कोई बहन है कोई भाई मस्ती से झूम रहे हैं। क्या करना है भाई, निंद्रा देवी को रखना है या भगा देना है? साहु भाई क्या करना है, क्योंकि अभ्यास नहीं कर सकेंगे फिर। बोलो, पकाना है क्या कि रखना है इस अंदर ही हॉल के अंदर? हाँ, वो तो वाइब्रेशन फटाफट फैल जाते हैं, दूसरा भी झूलने लगता है पड़ोसी। क्योंकि क्या होता है, भोजन नाश्ता करते हैं ना, तो भोजन करते समय, नाश्ता करने के बाद वो एनर्जी जो है ना वो डाइजेशन सिस्टम पर फोकस करती है, उसके कारण फिर हम ड्राउजी लगता है। तो थोड़ा सा उठेंगे सभी, निंद्रा देवी को भगा देंगे हम।